यरमिया अध्याय 16। यरमिया की पुस्तक में से अध्याय 16 खोले। हमने देखा है कि परमेश्वर ने यरमिया को युवावस्था में ही सेवकाई के लिए बुला लिया था। अतः अध्याय 16 में, यरमिया अध्याय 16 पद 1 और 2, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, विवाह ना करना या संतान ना उत्पन्न करना आने वाले संकटकालीन समय के प्रतीक था, क्योंकि आने वाला समय ऐसा दुखदायी होगा कि संतान और पत्नी का निर्वाह बहुत कठिन होगा। अतः उचित तो ये होगा कि ना तो विवाह किया जाए ना संतान उत्पन्न की जाए। यदि कठिनाई के समय आपके पास परिवार होगा तो आपके साथ साथ वे भी भूख से या तो शत्रु के हाथों से मर जाएंगे। तो ये समय ना शादी का ना तो बच्चे उत्पन्न करने का है। अतः उसका कुवारा रहना इसराइलियों के लिए एक चिन्ह था। दूसरी ओर देखिए कि परमेश्वर होशे को विवाह करने को कहता है, क्योंकि उसका विवाह लोगों के लिए एक चिन्ह होगा। यशया की संतानों के नाम को उसने अपनी प्रजा के लिए चिन्ह नियुक्त किया। इसी प्रकार यरमिया को परमेश्वर ने अविवाहित रहने के लिए कहा। यरमिया अध्याय 16 पद 3 से लेकर 6 तक, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय यहोवा यू कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा ना उनको मिट्टी देगा, वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़े रहेंगे, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे और उनकी लोथें आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगी। यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें ना जाना, ना छाती पीटने के लिए कहीं जाना और ना इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, ना तो इनको मिट्टी दी जाएगी, ना लोग छाती पीटेंगे, ना अपना शरीर चीरेंगे और ना सिर मुंडाएंगे। इसराइल में यदि किसी परिवार में मृत्यु हो जाती है तो मृतक के संबंधियों को 30 दिन तक दाढ़ी मुंडवाना वर्जित है। 30 दिन पश्चात आप हजामत करते हैं और अपनी दाढ़ी मूंछों के बाल ले जाकर परमेश्वर को चढ़ाते हैं, जो एक बलिदान स्वरूप होता है। ये एक चिन्ह था, ये विलाप करने का एक चिन्ह था। यहूदियों में विलाप की ये प्रथा आज भी प्रचलित है। यहोवा कहता है कि जब यहूदियों पर ये विपत्तियां आएंगी और उनकी लोथ सड़कों पर पड़ी होगी, तब कोई भी विलाप की इस प्रथा का पालन नहीं करेगा, ना अपना शरीर चीरेंगे और ना सिर मुंडाएंगे। यरमिया अध्याय 16 पद 6। इनके लिए कोई शोक करने वाला को रोटी ना बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दे। मृतक के प्रति अपना गहरा प्रेम जताने के लिए वे बहुत ऊंचे स्वर में विलाप करते थे। मृतक के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए वे भाड़े के विलाप करने वाले भी लाते थे, क्योंकि वे व्यवसायिक विलाप करने वाले होते थे। अतः वे उनके साथ बहुत ऊंचे स्वर में विलाप करते थे। यरमिया परमेश्वर का संदेश पहुंचाता है, इनके लिए कोई शोक करने वालों को रोटी ना बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दे। यरमिया अध्याय 16 पद 7, और ना लोग पिता वो माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे। परमेश्वर कहता है कि विवाह मत करना कि संतान उत्पन्न ना हो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी बड़ी अपमानित और भयंकर मृत्यु को देखेगी। उन्हें कोई दफन करने वाला भी ना होगा, विलाप करने के लिए वहां कोई नहीं होगा। यरमिया उन दुखदायी दिनों की चर्चा कर रहा था जो उन पर आने वाले थे। यही दर्शाने के लिए यरमिया विवाह नहीं कर रहा था कि संतान उत्पन्न ना हो। पद 8 में परमेश्वर यरमिया को एक और आज्ञा देता है। यरमिया अध्याय 16 पद 8। तो जेबनार के घर में इनके साथ खाने पीने के लिए ना जाना। उन दिनों के टीवी रेडियो या सिनेमा तो नहीं था, अतः उनके मनोरंजन का एकमात्र साधन था प्रीति भोज। ये वे अवसर होता था जब केवल भोजन ही नहीं मनोरंजन का भी पूरा पूरा आनंद लिया जाता था और वहां ठहाके लगाना चलता रहता था। ये समय राग रंग और मनोरंजन का होता था। परमेश्वर यरमिया से कहता है कि तू वहां मत जाना। यरमिया अध्याय 16 पद 9। क्योंकि सेनाओं का यहोवा इसराइल का परमेश्वर यो कहता है, देख तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, ना दुल्हे ना दुल्हन का शब्द। परमेश्वर यहोवा कहता है कि उनकी आंखों के सामने वो इस देश में ये सब समाप्त कर देगा। यरमिया का उनके साथ सम्मिलित न होना इसी बात का संकेत है। यरमिया अध्याय 16 पद 10 से लेकर 12 तक। और जब तो इन लोगों से ये सब बातें कहे और वे तुझसे पूछे कि यहोवा ने हमारे ऊपर ये सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है, हमारा अधर्म क्या है और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है, तो तू इन लोगों से कहना यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत की और मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया, और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन के हट पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। वहां अराजकता व्याप्त थी, सबके सब अपने दुष्ट मन की कल्पनाओं के पीछे भाग रहे थे। परमेश्वर की व्यवस्था का परित्याग किया जा चुका था और यही कारण था कि परमेश्वर का दंड उन पर आने वाला था। एक यहूदी अपने उत्तराधिकार पर गर्व करता था। वे सदैव अपने पूर्वजों के बारे में बातें किया करते थे। यीशु भी उनके इसी स्वभाव का उल्लेख करता है जब वो कहता है कि वे सदैव कहते हैं हमारे पूर्वज और हमारे पुरखाओं के समय में। आपको ध्यान होगा कि स्तिफनुस को महासभा के सामने उपस्थित किया गया था। उसने महासभा के समक्ष उनके इतिहास का विवरण करना आरंभ किया था और वो उनके दिखावे के कारण अति रंजित हो गया था, क्योंकि उसे ध्यान आ गया था कि उन्होंने कैसे भविष्यद् वक्ताओं को उत्पीड़ित किया था। यहां यरमिया कह रहा था, जानते हो तुम्हारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे पुरखाओं ने परमेश्वर को त्याग कर दिया है। उन्होंने मूर्ति पूजा की, परंतु तुम उनसे भी अधिक पतित हो, सबके सब अपने दुष्ट मन का अनुसरण कर रहे हो। इसी कारण से परमेश्वर तुम पर आने वाले दंड की घोषणा कर रहा है। यरमिया परमेश्वर का संदेश उन तक लाया और उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि उन्होंने उसे बंदीगृह में डाल दिया। स्तिफनुस महासभा को यही स्मरण करा रहा था, हमारे पूर्वज, आपको ध्यान होगा, जब यीशु उनसे बातें करता था तब वे बार बार यही कहते थे, हमारे पूर्वज। यीशु ने उनसे कहा था, यदि इब्राहिम तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझ में विश्वास करते, क्योंकि इब्राहिम तो मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। परंतु वे यीशु से विवाद ही करते रहे, वे कहने लगे, हमारा पिता इब्राहिम है। इस पर यीशु ने उन्हें कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। स्तिफनुस ने भावनात्मक हो उनसे कहा, ऐसा कौन सा भविष्यद् वक्ता है जिनको तुमने पतरवान ना किया होगा। इस प्रकार उसने उन्हें उनके पितरों के कामों का विवरण देना आरंभ कर दिया कि वे महिमाशाली और विश्वास के आदर्शवादी व्यक्ति नहीं थे, वे वास्तव में परमेश्वर से दूर थे। उसने उन पर ये सत्य प्रकाशित किया। यरमिया अध्याय 16 पद 13 से लेकर 15 तक, परमेश्वर ने कहा, इस कारण मैं तुमको इस देश से उखाड़कर ऐसा देश में फेंक दूंगा जिसको ना तो तुम जानते हो और ना तुम्हारे पुरखा जानते थे, और वहां तुम रात दिन दूसरे देवताओं की उपासना करते रहोगे, क्योंकि वहां मैं तुम पर कुछ अनुग्रह ना करूंगा। फिर यहोवा की ये वाणी हुई, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें फिर यह ना कहा जाएगा कि यहोवा जो इसराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, वरन ये कहा जाएगा कि यहोवा जो इसराइलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उसने उनको बरबस कर दिया था छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊंगा। अब यरमिया उन्हें उनके अंधकार के समय के लिए कहता है कि इसी पीढ़ी में वे बंदी बनाकर ले जाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने ही समय में परमेश्वर का त्याग करने की दुष्टता की है, इसलिए वे इसी पीढ़ी में ऐसा दंड पाएंगे। यद्यपि वो उन पर दंड की ये भविष्यवाणी दे रहा है, वो एक कदम आगे बढ़कर उस समय का भी उल्लेख कर रहा है कि महिमा का वो दिन भी आएगा जब परमेश्वर उन्हें फिर से अपने देश में ले आएगा। 70 वर्ष की बंधुआई के बाद परमेश्वर उन्हें पुनः अपने देश में ले आएगा और वे कहेंगे, यहोवा हमें बंधुआई से छुड़ा लाया है, बेशक वही यहोवा जो हमारे पूर्वजों को मिस्र के दासत्व से छुड़ा लाया था। तब उनकी चर्चा का विषय यही होगा, यहोवा जो हमें बंधुआई से छुड़ा लाया है और हमें इस देश में फिर से बसाया है। यरमिया अध्याय 16 पद 16 से लेकर 18 तक, देखो यहोवा की ये वाणी है कि मैं बहुत से मछुओं को बुलवा भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ ले, और फिर मैं बहुत से बहेलियों को बुलवा भेजूंगा कि वे इनको आहेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों की दरारों में से निकाले, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वो मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, सो मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया और मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है। यरमिया परमेश्वर के कहने पर पुकार उठा। यरमिया अध्याय 16 पद 19 से लेकर 21 तक, हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़ गढ़, संकट के समय मेरा शरण स्थान, जाति जाति के लोग पृथ्वी की चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। इस कारण एक इस बार मैं इन लोगों को अपना बुझ बल और पराक्रम दिखाऊंगा कि वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। यरमिया की यह पुकार एक भजन जैसी है। भजन संहिता 118 पद 14। परमेश्वर मेरा भल और भजन का विषय है, वो मेरा उद्धार ठहरा है। भजन संहिता 91 पद 2। वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हो सकता है कि यरमिया इस भजन को मन में ले आया हो। हे यहोवा, हे मेरे बल और गढ़, संकट के समय मेरे शरण स्थान। तब वो अन्य जातियों के लिए भविष्यवाणी देता है, जाति जाति के लोग पृथ्वी की चारों ओर से आकर कहेंगे। रोम की कलीसिया को पौलुस जब पत्र लिख रहा था, तब उसने भी इसी भविष्यवाणी का उल्लेख किया है।